सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में चलते हैं गैंगटॉक। गैंगटॉक में 13वें इंडिया टूरिज्म मार्ट का आयोजन हुआ, तो आइए हम विस्तार से ही समझते हैं अपने संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा के साथ इस खास बातचीत में कि इंडिया टूरिज्म मार्ट है क्या, किस तरह से ये पूर्वोत्तर भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। आइए विस्तार से जानते हैं। इंडिया टूरिज्म मार्ट के 13वें संस्करण का आयोजन 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक सिक्किम के गैंगटॉक में हुआ और पूर्वोत्तर भारत के पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट एक आयोजन है। तो इस बार का ये आयोजन कैसा रहा और इंडिया टूरिज्म मार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर हम विस्तार से अपने संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से जानते हैं जो सीधे गैंगटॉक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानस, सबसे पहले हम चर्चा अभी इस बात पर तो करेंगे ही कि इस बार का आयोजन कैसा रहा, लेकिन उससे पहले एक मूल सवाल ये कि इंडिया टूरिज्म मार्ट है क्या, हमारे श्रोताओं को पहले ये समझाएं क्या भूमिका है इसकी पूर्वोत्तर भारत के पर्यटन को देश विदेश में एक नई पहचान देने के लिहाज से।
जी, जैसे आपने पहले बताया कि ये 13वां संस्करण है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये पिछले कुछ सालों से यहाँ पे चल रहा है पूरे पूर्वोत्तर में ही। इसका मेन रीजन ये है कि नॉर्थ ईस्ट को देश विदेश के जो टूरिस्ट है और बायर सेलर्स है, इंडस्ट्री है, उनसे मिलाना, यहाँ की जो धरोहर है, जो अनट्रैप्ड ब्यूटी कहेंगे जिसको, हो सकते हैं ऐसे आप कह सकते हैं कि जो यहाँ के देखने लायक चीज है, जगह है, वो हम लोग के नजर में नहीं आए थे पहले, तो उसे ये दुनिया के सामने उजागर करना। तो मूल तरह से ये है कि नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट की पर्यटन क्षेत्र को देश और दुनिया से जोड़ना मूल कारण ये है।
तो अब हम समझना चाहेंगे कि इस बार का 13वां संस्करण इंडिया टूरिज्म मार्ट का कैसा रहा, कौन इसमें भागीदार बने और किस तरह से इस आयोजन को फिर से पर्यटन मंत्रालय ने सफलता के साथ पूरा किया।
जी, जैसे आपने बताया, ये सिक्किम के राजधानी शहर गैंगटॉक में आयोजित किया गया और ये सिक्किम दूसरे बार के लिए ये आयोजित किया और ये 4 दिन तक ये मार्च चला और इसमें पूर्वोत्तर के सभी प्रदेश के प्रतिनिधि रहे। इसके अलावा भारतवर्ष के लगभग हर प्रदेश से लोग आए, जिसमें टूरिस्ट पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग है, टूर ऑपरेटर है या होटलर्स है या तो और इस क्षेत्र से जुड़े हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हैं, दूसरे तरह के लोग हैं। फिर सोशल मीडिया, हम लोग मानते हैं सोशल मीडिया, मीडिया का क्या प्रभाव है इसको पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा के लिए, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर आए। इसके अलावा लगभग 18 से 19 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे आए जो टूरिज्म क्षेत्र से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। और जैसे हम लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम ही ऐसे जगह है जो देश विदेश से पर्यटक यहाँ लगभग हर साल आते हैं। अगर हम बारिश के 1-2 महीना छोड़ दें तो 9-10 महीने यहाँ पे टूरिस्ट रहते हैं। यहाँ लगभग 200 ऐसे जगह है जो टूरिस्ट के लिए जो देखने लायक है। आप मान सकते हैं छोटे से जगह है, मतलब भौगोलिक आयतन के हिसाब से और यहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से सिक्किम बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ लगभग 200 ऐसे क्षेत्र है जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। ये यकीनन एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर पार्टिसिपेशन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, असम के पर्यटन मंत्री आए रंजीत कुमार दास, सिक्किम के पर्यटन मंत्री रहे यहाँ पे, अरुणाचल के पर्यटन मंत्री आए, टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय जो आयोजक था उनके सेक्रेटरी आए और बाकी जितने भी सीनियर ऑफिसर थे सब आए। तो और ये मैं सिर्फ ये यहाँ पे सिर्फ पर्यटन ही में ही ये पूरा इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट सीमित नहीं रहा। तो यहाँ जैसे आज असम के जो यूनिक रिच कल्चर है, क्योंकि मैं भी उस प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ लोगों के सामने यहाँ पे दर्शाया गया। परसों यहाँ पे सिक्किम का जो संस्कृति है, संस्कृति के जुड़े है विभिन्न पहलू है लोगों के सामने दिखाया गया। यहाँ पे एग्जीबिशन लगाए गए हैं, मतलब लोग खरीद भी सकते हैं और पूर्वोत्तर के सभी प्रदेश के लोग यहाँ पे अपना स्टॉल लगा के रखे हैं। तो वहां पे जो अपना कल्चर है, आर्ट है, टूरिज्म सेक्टर से लोग है, संस्कृति है और ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब पर्यटन की बात करें, मैं आऊंगा तो आर्ट कल्चर भी देखूंगा, तो सब यहाँ पे एग्जीबिट किया गया, लोगों को दिखाया गया, लोगों को समझाया गया। तो एक आप मान सकते हैं कि पूरे पूर्वोत्तर के कला संस्कृति पर्यटन को एक मंच पर लाने का एक मौका था।
बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, कला संस्कृति पर्यटन को एक मंच पर लाने का एक बहुत बड़ा अवसर था। इसीलिए हमने देखा भी कि करीब 39 के आसपास इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स इसमें शामिल थे और बहुत सारे जो डोमेस्टिक सेलर हैं, उद्यमी हैं यानी एंटरप्रेन्योर्स हैं, खरीदार हैं, वो सब बड़ी संख्या में यहां पहुंचे। तो कैसे ये एक मंच पर आने का मौका देता है, खासतौर पर टूर ऑपरेटर्स के अलावा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, खरीदार या जो विक्रेता है, उनको एक साथ लाने के लिए?
देखिए, यहाँ जब इतने बड़े मंच पे लोग मिलते हैं तो एक, जिसको कहते हैं हम लोग, एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। आप असम में क्या कर रहे हैं, आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं, और जैसे आपने बताया दूसरे देश विदेश में कैसे हो रहे हैं, तो एक जो एंटरप्रेन्योर है, युवा स्टार्टअप वाले हैं, उन लोग को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और साथ ही कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत से प्रदेश के यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आए, सीनियर ऑफिशियल्स आए, मंत्रीगण आए, तो अपने प्रदेश में कैसे ब्रांडिंग कर पाए, कैसे मार्केटिंग कर पाए।
और बिल्कुल, और बहुत सारी यहाँ बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स हुई और तमाम ऐसे आयोजन रहे
जैसे होटलर्स आए, बायर्स एंड सेलर्स आए, तो इसको एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के जरिए नए आने वाले दिनों में कैसे कर सकते हैं। और जैसे और एक बहुत बड़ा ये भाई मुद्दा उठाना होगा कि अगर हम लोग पिछले 10-12 साल की बात करें तो नॉर्थ, देखिए इसमें क्या है, कनेक्टिविटी का इश्यू है और एक आपका सिचुएशन कैसा हो, मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बात करें, अगर आपके वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, हिंसा है, तो लोग कैसे आएंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं पिछले 10-12 साल से जो नॉर्थ ईस्ट की पहले की छवि थी वो बिल्कुल बदल गए है, इससे अभी लैंड ऑफ पीस। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भाई जैसे पहले लोग सोचते थे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ऐसा है नहीं, बिल्कुल बदल गए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एयर कनेक्टिविटी जो उड़ान स्कीम है और हाईवेज की हो या रोडवेज कनेक्टिविटी हो, तो पहले से बहुत बढ़िया हुआ है, बिल्कुल सही है। ये भी मानना होगा कि कुछ कुछ जगह पे करने की बात है, ये भी सरसा पे आया तो, लेकिन अगर हम लोग पहले की तुलना करें तो अभी नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार हुआ है। और ये भी एक कारण है कि लोग यहाँ पे आना चाहते हैं और आ रहे हैं लोग, तो यही सब जो इश्यूज है कि कैसे लोगों को लाया जाए और एक एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बने। होम स्टे की बात हुई, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है एंटरप्रेन्योर के लिए, तो होम स्टे के जरिए लोग कैसे पैसा कमाए, यहाँ पे लोगों की रोजगार मिले, तो यही सब मुद्दे यहाँ पे सरसा पे आया था।
एक और अंत में सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है और इंडिया टूरिज्म मार्ट में इस बात पर भी फोकस होता है कि इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल टूरिज्म हो, ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म हो, तो इस पर कितना जोर रहता है इंडिया टूरिज्म मार्ट पर, इस बार भी क्या इस पर जोर रहा?
ये बिल्कुल एक थीम ही था कि इसमें जो है सिक्किम की, जैसे आपने वहां से फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है। मैं एक छोटे से उदाहरण आपको देता हूँ, आपने पहले भी सुना होगा यहाँ पे एमजी मार्ग बोल के जगह है एक, जो हम कहते हैं कि टूरिस्ट के लिए गैंगटोक शहर में हार्ट है, वहां हर दिन हजारों लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन एक नाम मात्र यहाँ पे गंदगी नहीं होगा, कोई कूड़ा कागज यहाँ पे नहीं देखेगा। तो ये यहाँ के सिक्किम के लोगों की फितरत में है, तो ये सस्टेनेबल टूरिज्म है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा टूरिज्म आए, लोग भर जाए, जो बैलेंस है नेचर के साथ, इको सेंसिटिव जो इश्यूज है, जो सस्टेनेबिलिटी है, तो उसको भी मेंटेन रखना है, ये सारे मुद्दा यहाँ पे आए। और सिर्फ यही नहीं, ये एक गुड प्रैक्टिस है जो बाहर दूसरी जगह पे भी यहाँ पे क्या इसको भी लागू कर सकते हैं, इस बात पे भी चर्चा हुआ। सिक्किम का जो सक्सेस स्टोरीज है कि लोग भी आए लेकिन जो परिवेश है उसको वो दूषित ना हो, जो एनवायरमेंट है वो भी मेंटेन रहे, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो ये भी एक मॉडल स्टेट की, जैसे आपने बताया, यहाँ पे टूरिज्म क्षेत्र में ही नहीं अपने डे टू डे लाइफ में भी इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाए हम लोग, इस पर भी बिल्कुल चर्चा हुआ और लोग यहाँ से बहुत, डेफिनेटली लोग यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ से लेके गए।
धन्यवाद मानस, विस्तार से इंडिया टूरिज्म मार्ट के बारे में जानकारी देने के लिए। श्रोताओं, कल हमने राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया और हम इन दिनों कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस भगवान धरती आभा बिरसा मुंडा की स्मृति में मनाया जाता है, तो हम आज भी कार्यक्रम में उन पूर्वोत्तर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम एक नहीं बल्कि दो स्वाधीनता सेनानियों और उन विभूतियों की बात करने वाले हैं जो मणिपुर से थे, और मणिपुर में जहां एक तरफ उन्होंने मणिपुर में समुदाय की स्वाधीनता का संघर्ष किया, वहीं ब्रिटिश सत्ता के जो अत्याचार और जो शोषण था और जो हस्तक्षेप था उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। तो ये दो नाम कौन है आप खुद इस विशेष रिपोर्ट में जानेंगे, और आप साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरह से मणिपुर और पूर्वोत्तर भारत उन स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला से सुशोभित है जिसमें बहुत से नाम हैं जिनकी इन दिनों हम कार्यक्रम में चर्चा कर ही रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास मैदानों और नगरों में लड़े गए संघर्षों के अलावा उन पहाड़ों, जंगलों और दूर बसे समुदायों में भी उतना ही प्रभावशाली रहा है जहां स्वतंत्रता केवल एक स्वप्न नहीं बल्कि आत्मसम्मान की पुकार थी। मणिपुर की धरती भी ऐसी ही पुकारों की साक्षी रही है। यह वह भूमि है जहां संस्कृति के साथ साथ साहस भी पीढ़ियों से जन्म लेता आया है, और इसी धरती ने दो ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया जिनकी गाथाएं आज भी हवा में फुसफुसाती हैं। वीर टिकेंद्रजीत सिंह और नगुलखुप हाउकिप। वीर टिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर के राजघराने के राजकुमार थे, पर उनकी पहचान केवल एक शाही वंशज की नहीं रही। वे उस क्रांतिकारी चेतना के स्वर थे जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध मणिपुर के स्वाभिमान को जगा दिया। 19वीं शताब्दी के अंत में जब अंग्रेजों ने मणिपुर की राजनीति में हस्तक्षेप प्रारंभ किया, तब टिकेंद्रजीत सिंह ने इसे केवल शासन में दखल नहीं बल्कि मणिपुर के स्वतंत्र अस्तित्व पर आघात के रूप में देखा। उन्होंने राज दरबार में व्याप्त षड्यंत्रों को समझते हुए वह कदम उठाया जिसे इतिहास महल क्रांति के नाम से जानता है। इस क्रांति ने अंग्रेजों को विचलित कर दिया। वे समझ चुके थे कि टिकेंद्रजीत केवल एक राजकुमार नहीं बल्कि जन प्रतिरोध के मुखिया बन चुके हैं। परिणाम स्वरूप परिस्थितियां उस निर्णायक समय की ओर बढ़ी जिसने 1891 के अंग्लो मणिपुर युद्ध को जन्म दिया। टिकेंद्रजीत ने अपने विश्वस्त सेनापतियों जनरल पौना ब्रजवासी और गोरखा योद्धा सूबेदार निरंजन छेत्री के साथ अंग्रेजी सेना का सामना किया। ये युद्ध शक्ति और साधनों की असमानता के बावजूद अदम्य साहस का उदाहरण बन गया। अंग्रेजों ने कठोर कदम उठाए। वे टिकेंद्रजीत को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते थे। अंततः युद्ध के बाद वे गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजों ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया, लेकिन उनके भीतर भय नहीं था। जब उनसे अंग्रेज अफसरों ने अंतिम बार पूछा कि क्या वे अपने निर्णय पर पछताते हैं, तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, अपनी भूमि और अपनी जनता की रक्षा अपराध नहीं, कर्तव्य है। 13 अगस्त 1891 को इम्फाल में उन्हें फांसी दे दी गई।
मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से।
कहते हैं जिस स्थान पर उनका बलिदान हुआ वहां उपस्थित जनता ने मौन होकर अपना सिर झुका लिया, मानो पूरा मणिपुर शोक में डूब गया था पर गर्व से भी अभिभूत हो गया था। टिकेंद्रजीत की फांसी ने जनता में भय नहीं बल्कि प्रतिरोध की नई चिंगारी जगाई जिसने आने वाले वर्षों में अनेक आंदोलनों को प्रेरणा दी। टिकेंद्रजीत के शौर्य की अग्नि अभी शांत भी न हुई थी कि कुछ ही वर्षों बाद मणिपुर और निकटवर्ती कुकी क्षेत्रों में स्वतंत्रता का एक और स्वर उठा। ये आवाज थी नगुलखोप हाउकिप की। टिकेंद्रजीत का संघर्ष जहां 19वीं सदी के अंत में राजसत्ता और जनता दोनों की अस्मिता की रक्षा का प्रतीक था, वहीं हाउकिप का संघर्ष 20वीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश विस्तारवाद के विरुद्ध जन प्रतिरोध की नई गाथा लेकर आया। और यही वह स्थान है जहां इतिहास दो समानांतर परंतु जुड़े हुए संघर्षों को एक सूत्र में पिरोता है। जब टिकेंद्र जीत का बलिदान मणिपुर की चेतना को नई दिशा दे चुका था, तब लगभग ढाई दशक बाद कुकी समुदाय भी उसी भावना से प्रेरित हो चुका था। हाउ के इसी विरासत को आगे बढ़ाने वाले योद्धा बने।
आजादी से जिया गंगा में राख बन के बहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी।
1917 से 1919 के बीच लड़ा गया एंग्लो कुकी युद्ध ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विशाल और सुसंगठित प्रतिरोध था। अंग्रेज उस समय मणिपुर और आसपास के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहे थे। उन्होंने कुकी युवाओं को जबरन श्रमिक सेना में भर्ती करने के आदेश जारी किए थे। ये आदेश केवल श्रम का प्रश्न नहीं बल्कि जनजातीय स्वाभिमान को चोट पहुँचाने जैसा था। इसी समय निगुलखोप हाउकिप ने अपने समुदाय को संगठित किया। उन्होंने कुकी मिलिशिया का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के विस्तार को चुनौती दे दी। हाउकिप केवल एक सैन्य नेता नहीं थे बल्कि रणनीतिक और दूरदर्शी भी थे। वे जानते थे कि अंग्रेजों की शक्ति बहुत बड़ी है, पर उन्होंने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने बार बार उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की, कभी लालच से कभी धमकियों से, पर वे अडिग रहे। उनका ये अडिगपन ही उन्हें कुकी वॉर हीरो की उपलब्धि दिलाता है। अंततः व्यापक दमन और लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें पहले इम्फाल फिर असम में कैद रखा गया, पर कारावास भी उनके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ पाया। उन्होंने कहा था, शरीर को कैद किया जा सकता है पर जनता की स्वतंत्र इच्छा को नहीं। उनका संघर्ष कुकी समुदाय की पहचान और स्वतंत्रता के अधिकार का प्रतीक बन गया और आज भी उस युद्ध को कुकी इतिहास में सबसे बड़े प्रतिरोधों में एक माना जाता है। दोनों प्रसंग अलग अलग समय के हैं, पर उनके भीतर एक गहरी समानता है। अपनी भूमि, अपनी संस्कृति और अपने स्वाभिमान की रक्षा की भावना। टिकेंद्र जीत सिंह ने राजसत्ता और जनता को एक सूत्र में बांधकर अंग्रेजों को चुनौती दी, जबकि हाउकिप ने अपने समुदाय के अस्तित्व और सम्मान के लिए हथियार उठाए। दोनों ने ही अधीनता को स्वीकार करने से बेहतर संघर्ष को चुना। आज मणिपुर में वीर टिकेंद्र जीत पार्क, स्मारक स्थल और कुकी समुदाय में हाउकिप की वीरता को समर्पित अनेक कार्यक्रम इस बात के प्रमाण है कि ये भूमि अपने योद्धाओं को भूलती नहीं। उनकी कहानियां आज भी मन में उत्साह जगाती हैं और ये याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा केवल इतिहास तक सीमित नहीं, ये आज भी राष्ट्रीय चेतना का एक प्रतीक है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए प्रियंका अरोड़ा।
वंदे मातरम, वंदे मातरम।
श्रोताओं, अब हम चल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में एक विशेष फुटबॉल लीग का आयोजन हो रहा है, मॉनवुल सुपर लीग। ये एक विशेष फुटबॉल लीग है जिसमें कई टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसका एक रंगारंग उद्घाटन समारोह हुआ और इसके उद्घाटन समारोह के बारे में हमारे संवाददाता मनोज ने अरुणाचल प्रदेश से हमें एक रिपोर्ट भेजी है, आइए आपको सुनवाते हैं।
तवांग स्थित ग्यालवा सांग्यांग क्याटसो हाई अल्टीट्यूड स्टेडियम में ड्यूरेक्स द बर्ड्स एंड बी स्टोक द्वारा प्रस्तुत और तवांग जिला खेल संघ द्वारा आयोजित मॉन्यूल सुपर लीग के पहले संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन हुआ। बहुप्रतीक्षित आयोजन मॉन्यूल क्षेत्र में युवाओं के बीच फुटबॉल और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें जिले भर से खिलाड़ी, गणमान्य व्यक्ति और उत्साहित दर्शक एकत्र हुए। उद्घाटन समारोह में विधायक फुरपा शेरिंग, शेरिंग लामू, नामगे शेरिंग, पूर्व विधायक शेरिंग ताशी, महान फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया, गजराज कोर के लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, बॉलीवुड अभिनेत्री डेजी शाह, प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका सुप्रिया पाठक एवं कई अन्य विशिष्ट अतिथि, अधिकारी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बाईचुंग भूटिया ने राज्य और मॉन्यूल क्षेत्र में फुटबॉल के प्रति बढ़ते उत्साह को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही लीग के आयोजन के लिए तवांग जिला खेल संघ के प्रयासों की सराहना करते हुए क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को निखारने और प्रशिक्षित करने में अपनी फुटबॉल अकादमी की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर MENARP और अफ्रीका के संचार एवं कॉरपोरेट मामलों के निदेशक रवि भटनागर ने कहा, हमें ड्यूरेक्स डबर्ट्स एंड बी स्टोक के माध्यम से मॉन्यूल सुपर लीग के साथ साझेदारी करने पर गर्व है। ये कार्यक्रम युवाओं के जीवन कौशल, आत्मविश्वास और स्वस्थ विकल्प चुनने की क्षमता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और उम्मीद है कि ये लीग कई उभरती प्रतिभाओं को प्रेरित करेगी और उनमें समुदाय में एकता और गौरव की भावना मजबूत करेगी। ड्यूरेक्स डबर्ट्स एंड बी स्टोक मॉन्यूल सुपर लीग में तवांग और वेस्ट कामेंग जिले की 7 टीमें शामिल है जो चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इस लीग का उद्देश्य खेल भावना को बढ़ावा देना, युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और क्षेत्र में उभरती फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए एक मंच तैयार करना है। लीग का ग्रैंड फिनाले आगामी 25 नवम्बर को आयोजित किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर के क्षेत्रीय समाचार इकाई से मैं मनोज कुमार शर्मा।
श्रोताओं, हम समय समय पर आपको कुछ ऐसी खास रिपोर्ट सुनवाते हैं जो हमें पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति, कला और पर्यटन से रूबरू करवाती हैं। तो आज हम चल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश किस तरह से पर्यटन के मामले में भी एक समृद्ध राज्य है और कैसे पर्यटकों को ये राज्य अपनी ओर खींचता है। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
भारत का उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश मानो प्रकृति के गोद में बसा एक अनुपम स्वर्ग है। यहाँ की वादियाँ, पर्वत, झीलें, झरने और सघन वन सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जिसे देखने के बाद कोई भी पर्यटक मंत्रमुग्ध हुए बिना रह नहीं सकता। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द डॉनलिट माउंटेन्स यानी उगते सूरज की धरती कहा जाता है, क्योंकि भारत में सूरज की पहली किरण यहीं से दिखाई देती है। पर्यटन की दृष्टि से ये राज्य बेहद समृद्ध है। यहाँ केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि समृद्ध आदिवासी संस्कृति, धार्मिक स्थल, साहसिक खेलों की संभावनाएं और लोक कला की विविध छटा भी है। अरुणाचल प्रदेश पर्यटन विभाग ने यहाँ 12 अलग अलग टूरिस्ट सर्किट्स को विकसित किया है जिनमें हर क्षेत्र की भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनजातीय विशेषताएं झलकती हैं। इससे यात्रियों को पूरे राज्य का विविध अनुभव मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं तवांग की। समुद्र तल से लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये क्षेत्र उत्तर पश्चिमी अरुणाचल का एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ स्थित तवांग मठ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और प्राचीन बौद्ध मठ है। ये 3 मंजिला विशाल मठ 282 मीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है। यहाँ बौद्ध संस्कृति की गहरी झलक देखने को मिलती है। तवांग के आसपास सेला दर्रा, जंग जलप्रपात और PTSO झील जैसी प्राकृतिक धरोहरें भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। सर्दियों में जब ये इलाका बर्फ से ढक जाता है तो ये जगह किसी रोमानी दृश्य जैसी लगती है। अब चलते हैं जीरो की ओर, लोअर सुबनसिरी। जिले का ये छोटा नगर अपनी अद्भुत खूबसूरती के लिए जाना जाता है। देवदार और चीड़ के वृक्षों से घिरी पहाड़ियाँ, हरे भरे धान के खेत और आपातानी जनजाति की जीवन शैली, ये सब मिलकर जीरो को अनोखी पहचान देते हैं। यहाँ हर वर्ष सितंबर महीने में आयोजित होने वाला जीरो म्यूजिक फेस्टिवल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। मेच मिनचुका, जिसे मिनचुका भी कहा जाता है, पश्चिम सियांग जिले में बसा एक छोटा परंतु अत्यंत मनोहारी नगर है। 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये घाटी चारों ओर से चीड़ के वृक्षों और झाड़ियों से ढकी है। बीच से बहती यारग्या पचू नदी इस घाटी को और भी मोहक बना देती है। मिनचुका में बौद्ध मठ, लकड़ी के पारंपरिक घर और शांत वातावरण सैलानियों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। यहाँ की संध्या का नजारा इतना मनोहारी होता है कि मानो समय ठहर सा जाता है।
अरुणाचल की बात करूं, क्या है घर
पासीघाट की बात करें तो इसे अरुणाचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये राज्य का सबसे पुराना नगर है, जिसकी स्थापना साल 1911 में हुई थी। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ की पहाड़ियों से निकलकर दिहांग अथवा सियांग नाम से आगे बहती है। नदी तट पर बसे इस नगर की सुंदरता अद्भुत है। रोमांचक खेलों जैसे रिवर राफ्टिंग और एंगलिंग के लिए पासीघाट एक आदर्श स्थान है। अरुणाचल प्रदेश केवल इन नगरों तक सीमित नहीं है। यहाँ के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता से भरे हुए हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में रेड पांडा, हिम तेंदुआ और दुर्लभ पक्षियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वन्य जीव प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए ये जगह खजाने से कम नहीं। राज्य की जनजातीय संस्कृति भी यहाँ का बड़ा आकर्षण है। अरुणाचल में लगभग 26 प्रमुख जनजातियाँ और 100 से अधिक उप जनजातियाँ निवास करती हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, नृत्य और उत्सव हैं। जैसे न्योकू, लौसर, मोपिन और सुलुंग जैसे त्योहार यहाँ के सांस्कृतिक जीवन की झलक दिखाते हैं। इन त्योहारों में गीत, नृत्य और पारंपरिक व्यंजन पर्यटकों को एक अलग अनुभव देते हैं। अरुणाचल प्रदेश का पर्यटन लगातार प्रगति कर रहा है। सड़क और हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। होलोंगी ईटानगर हवाई अड्डा खुलने से देश विदेश के पर्यटक अब आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। राज्य सरकार वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय हस्तशिल्प और हैंडलूम उत्पादों को भी बढ़ावा दे रही है। बांस और बेत से बने उत्पाद, पारंपरिक वस्त्र और हस्तशिल्प पर्यटकों के लिए यादगार उपहार बनते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स की संभावनाएं भी यहाँ बढ़ रही है। ट्रैकिंग, कैंपिंग, माउंटेन बाइकिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स अब पर्यटन के नए आकर्षण बन गए हैं। प्रकृति प्रेमी और रोमांच प्रेमी पर्यटक दोनों के लिए ये राज्य किसी सपने से कम नहीं। निश्चित ही आने वाले वर्षों में अरुणाचल प्रदेश भारत ही नहीं बल्कि विश्व पर्यटन मानचित्र पर और भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा। ये राज्य हमें सिखाता है कि यदि हम प्रकृति और संस्कृति को सहज कर चलें, तो पर्यटन केवल अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि समाज और संस्कृति को भी समृद्ध करता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं फरहत नाज।
श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें, airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044, 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
पूर्वोत्तर डायरी।